अरिहं ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोय सर्वसाहूणम् ईसु पञ्च नमो यारो सर्व पाव पणासर मङ्गलाणञ्च सर्वेषिन् अधमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्डतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलपण्डतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं त्वं व्रजामि अर्हन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवलपण्डस्तु धम्मो शरणं पव्रजामि परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज श्रीमद पंच महागुरु भक्ति का उत्सर्ग करूंगी। मण्यणा इन्द्र सूर पर्यतया पञ्च कल्याण सुखावली पत्तया दंसणं नाण झाणं अनन्तं बलम् तेजिणादिन्तु अम्हं वरं मङ्गलम् जेहि झाणग्दि बाणीः ऐषद्वयम् जम्म जर मरणनय दत्तयं दड्डयम् जेहि पत्तं शिवं शासयं ताणयम् தேமஹம் விந்து சித்தாவரம் நாணயம் பஞ்சாசார பஞ்சகி சம்சாஹயா வாரசங்காய் சுவஜலஹி அவகாஹயா மோக்ஷலட்சி மஹந்தி மஹந்தி சயா சூரிணோ விந்து மோக்ஷம் கயா சங்கயா கோர சம்சார பீமாடவி காரணே பிக்கவியராலண பாவ பஞ்சாரணே ரணஸ்தமக்காண ஜீவாண பஹதிசயா வந்தி மோதே உவஜாய அம்மேசயா உக்தவ சரண கரணி தீனங்கயா தம்மவர ஜான சுக்கிக் ஜானங்கயா நிக்பரன் தவசிரி ஏ சமாலிங்கயா சாகவோ தேமஹம் முக்ஷுபஹ மக்கயா ஏன தோத்தேன ஜோ பஞ்சி குரு வந்தே குருய சம்சார கண வெல்லி சூசுந்தை லஹைசோ சித்திசோ காய் வர மாணனம் குணைக்கம் மிந்தனம் புஞ்ச பஜாலனம் அருஹா சித்தாயிரியா உவஜ்ஜாயா சாஹு பஞ்ச பரமேத்தி ஏஞான நமுக்காரா பவே பவே மம சுஹந்திந்து இச்சாங்கந்தே பஞ்ச மகாகுரு பக்தி கௌசூகௌ தஷாலோசே அட்ட மகாபாடிஹே சஞ்சுத்தான அரஹந்தான அட்ட குண சம்பன்னான புட்டிலோய மத்தயம் பைத்தியானம் சித்தானம் அட்ட பவயணமாவு சஞ்சுத்தானம் ஆயரியானம் ஆயாராதிசுது நாணோபதேசயானம் உபத்யாயானம் திரியணகுணம் பாலனரயானம் சப்தசாஹூணம் நிச்சகாலம் அச்சேமி பூஜேமி நந்தாமி நமன்சாமி துக்கக்கௌ அம்மக்கௌ கோஹிராஹோ சுகை கமனம் சமாஹி மரணம் ஜிணுகு சம்பத்தி ஹூ மஜ்ஜம் ஜீவம் அஜீவம் தவ்வம் ஜிணவர வசேண ஜேண நித்திட்டம் தேவிந்த விந்த வந்தம் வந்தே தம் சர்வதா சிரசா Thank you. आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्राकृत भाषा में निबद्ध है और जितना संस्कृत में तत्वार्थ सूत्र का महत्व है प्राकृत में द्रव्य संग्रह ग्रंथ का भी वैसा ही महत्व है। और द्रव्य संग्रह में द्रव्यानुप संबंधी बहुत सारे विषय समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिए जैन पाठ्यक्रम में द्रव्य संग्रह एक प्रमुख ग्रंथ है। बड़े बड़े शिविर भी जहां लगते हैं वहां तत्वार्थ सूत्र, रत्नकंठ, श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह ये मुख्य ग्रंथ होते हैं और कंठस्थ पाठ की अपेक्षा पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी कहते थे कि हर जैन को भक्तामर और तत्वार्थ सूत्र ये तो कंठस्थ होना ही चाहिए। और फिर एक सहस्रनाम का भी उल्लेख करते थे कि सहस्रनाम सूत्र अपने आप में बड़ा प्रभावशाली सूत्र है, उसका भी पाठ कंठस्थ होना श्रेष्ठ है। अब मोक्ष मार्ग, अड़तीस गाथाओं में दो अध्याय पूर्ण हुए थे द्रव्य संग्रह के, तीसरा अध्याय है व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रारूपण करने वाला। सम्मदंसनानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्चयदु तत्त्वमयोनियो अप्पा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनको व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो और इन तीनों से तन्मय जो आत्मा है, माने जिस आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हुआ है वह आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है निश्चय से। व्यवहार से गुण को मोक्ष का कारण कहा और निश्चय से गुणी को मोक्ष का कारण कहा। गुण क्या होते हैं? द्रव्य की विशेषता को गुण कहते हैं। तो पर्याय क्या है? द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये गुणी नहीं है, ये गुण है और इन गुणों को धारण करने वाला गुणी कौन है? आत्मा है, जीव है। पेज वहां से रखा डालिए। तो व्यवहार में गुण और गुणी का भेद रखता है और निश्चय ने अभेद को स्वीकार करता है। तो व्यवहार से मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का उपाय, मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हुआ और निश्चय से इन तीन गुणों को धारण करने वाला गुणी आत्मा मोक्ष का मार्ग। रैणत्तै अपाणम यत् अन्न दवियम्मि तम्मा तत्तियमयु बोधि मोक्षस्य कारणं आदा। आत्मा को छोड़कर रत्नत्रय किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाया जाता, अर्थात जीव में ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र पाए जाते हैं, इसलिए इन तीनों से युक्त आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। जिस प्रकार चावल भात का कारण है, उपादान कारण, उसी प्रकार रत्नत्रयधारी आत्मा अपने सिद्ध पर्याय का कारण है, सिद्ध पर्याय मोक्ष में है, इसलिए आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। फिर अब इन गुणों का विवरण करते हैं। सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चरित्र क्या है। जीवादि सद्धन सम्मतं रूपमपणो तंतु दुर्भिणिवेश विमुक्तम नाणं सम्मंखुहूरिसरिजम्मि। अपणो रूपम सम्मतम, ये सम्यक जो है ये आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही रूप है। और जीवादिक तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। और कैसा होता है सम्यक दर्शन? दुर्भिणी वेश विमुक्तम, दुराग्रह से मुक्त, दुर्भिणी वेश से रहित होता है। दुर्भिनिवेश है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इनसे रहित होता है। और सदी जम्मी सम्यक दर्शन हो जाए तो नाणम सम्मंख हो जी, उसके पास जितना भी ज्ञान हो तुष्माश भिन्नम, इतना छह अक्षरों का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की श्रेणी में आता है। और सम्यक के बिना 11 अंगों का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होता है। 11 अंगों का ज्ञान, जैन आगम का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है अगर सम्यक्त्व नहीं है तो। सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन एक ही बात है, मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन एक ही बात है। इसलिए इसमें आप लोग उलझना मत कि अरे ये सम्यक्त्व क्या चीज है, हमने तो सम्यक दर्शन सुना था, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। समय ज्ञान का स्वरूप क्या है ये बतलाता है। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपरसरूवस गहनम सम्मम नाणम सायारमणेय भेयं च। संशय, संशय का अर्थ होता है दो कोटियों को छूने वाला ज्ञान, दो कोटियों को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। ऐसा है या ऐसा है, एक निर्णय पर नहीं आ रहा है, वो अभी दोनों को छू रहा है, ये है या वो है। वो दूर कुछ हवा में सफेद सफेद लहराता हुआ दिख रहा है, वो ध्वज है या फिर कोई पक्षी है, इस ज्ञान को संशय कहते हैं। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान में संशय नहीं रह जाता। तत्व कुतत्व के बारे में, देव अदेव के बारे में कोई संशय नहीं रह जाता। हे उपाधि के बारे में भी संशय नहीं रहता, ये हे है या ये हे है, ऐसा संशय सम्यक होने के बाद नहीं रहता। तो संशय दो कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान होता है। फिर विमोह, विमोह को दूसरे शब्दों में अनध्यवसाय कहते हैं। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय का अर्थ होता है उद्यम न करना, जानने का प्रयास ही न करना। गच्छत तृण स्पर्शवत, इसका दृष्टांत दिया कि कोई पैरों में कुछ भी पहने बिना चला जा रहा है और कुछ पैर में कर्कश स्पर्श अनुभव में आया, अब वो जल्दी में है, उसको जाना है कहीं, तो वो ध्यान नहीं देता कि क्या था, होगा कुछ, चलो चले चलो, होगा कुछ। ये जो अभिप्राय है इसको अनध्यवसाय कहते हैं। जैसे आत्मा की चर्चा निकली, आश्रव बंध आदि के तत्वों की चर्चा निकली, अरे हमें क्या करना, होगा कुछ, जीव अजीव होंगे कुछ, हमें दूसरा काम है, तो उसकी उसमें रुचि नहीं होती, जानने का उद्यम ही नहीं करता, वो अनध्यवसाय है। तुम शरीर हो कि आत्मा हो, अरे जो भी है, हैं होंगे, क्या करना है, मतलब उसकी रुचि नहीं, उसने जानने का कोई प्रयास ही नहीं, अनध्यवसाय। फिर संशय में क्या होता है, कांटा था या कांच था, पैर में लगने के बाद क्या सोचता है वो, कांटा या कांच, ये जो दो को स्पर्श करता है ज्ञान, तो ये संशय कहलाता है। और फिर तीसरा जो है वो है विपर्य, विपर्य को यहां पर विभ्रम कहा है। विभ्रम का अर्थ होता है जो था उससे दूसरा निर्णय कर लेना। जैसे कांटा लगा था और वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है कि नहीं कांच ही लगा है मुझे। इसी प्रकार तत्व को तत्व में भी ऐसा ही निर्णय कर लेता है, अरे नहीं वो जो नौ तत्व का है वो सही है, हम ये सात तत्व हमारे हम नहीं मानते इनको। तो कुतत्व को या अतत्व को तत्व समझ लेना, इस विपरीत निर्णय का नाम है विभ्रम। विभ्रम को ही विपर्यय कहते हैं। ये विपर्यय तीन प्रकार के होते हैं। इसको विपर्यय को विपर्यास भी कहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में इनका उल्लेख है। एक है स्वरूप विपर्यास, जिसका जो स्वरूप है उसमें विपरीत निर्णय कर लेना स्वरूप विपर्यास। जैसे शरीर को चेतन समझ लेना, अरे जब तक मरे नहीं है तब तक तो चेतन है, ऐसा करते हैं लोग, बोलते हैं ऐसा। अभी थोड़ी अचेतन, मर जाने के बाद अचेतन हुआ अभी, ये विपर्य है। अचेतन में चेतन का निर्णय कर लिया विपर्य, विपरीत निर्णय, ये स्वरूप विपर्य है। यानी रूपी को अरूपी स्वरूप मान लिया, अरूपी को रूपी स्वरूप मान लिया, जीव को शरीर मान लिया, शरीर को जीव मान लिया, स्वरूप विपर्य। दूसरा है कारण विपर्यास, ये बहुत महत्व का विषय है। कारण विपर्यास, कारण विपर्यास का अर्थ क्या होता है कि किसी कार्य का कोई कारण तो होता ही है। अब कारण के दो भेद होते हैं, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग कारण उपादान है, बाह्य कारण निमित्त है। तो कारणों में विपर्यय रहना, जैसे कुछ मत वाले ये मानते हैं कि पृथ्वी जाति के परमाणु ही अलग होते हैं, उनसे पृथ्वी ही रची जाती है। वायु जाति के परमाणु ही अलग होते हैं, उनसे वायु की ही रचना होती है। जल जाति के परमाणु ही अलग होते हैं, उनसे जल की ही रचना होती है। अग्नि के परमाणु अलग होते हैं, उससे अग्नि ही रची जाती है। अर्थात इस लोक में ऐसे पृथक पृथक परमाणु हैं, ऐसी मान्यता उनकी, जिनके कारण अमुक कार्य संपन्न होता है। पर अपन देखो, अपन व्यावहारिक रूप से इस पर विचार करके देखो, क्या ऐसा सच है? कोई दृष्टांत है आपके पास सत्य अथवा असत्य के बारे में निर्णय करने का? दृष्टांत हम बतला रहे हैं आपको कि यदि ये परमाणु एक दूसरे में संक्रांत न होते हो, अर्थात एक दूसरे में परिवर्तन न करते हो, तो फिर ये विचारने की बात है कि अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, इनमें अपन देखें वैज्ञानिक एक दृष्टांत अपन ले लें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो खुद ही जल जाता है वो। ऐसे हाइड्रोजन का अगर एक वो छोड़ा जाए तो वायु में वो अपने आप प्रज्वलित हो जाता है और उसमें से नीली लपट निकलती है, ब्लू फ्लेम। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की जो प्रतिक्रिया होती है आपस में, जो रिएक्शन होता है इनमें, उस रिएक्शन से क्या होता है, H2O बन जाता है। 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, ऐसा केमिकल फॉर्मूला बनता है उसका। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब गैस पंच स्थावरों में कौन सी श्रेणी में रखेंगे, वायु में। और दो वायु मिलने से जल बन गया, तो फिर ये कैसे माना जा सकता है कि वायु के परमाणु वायु का ही निर्माण करते हैं, जल के परमाणु जल का ही निर्माण करते हैं, वायु के परमाणुओं से जल का निर्माण नहीं हो सकता? इस दृष्टांत से तो बात गलत सिद्ध हो रही ना। इसी तरह और भी अपन दृष्टांत निकाल सकते हैं। अब जैसे राख को अग्नि काय कहा है। अग्नि तो ठीक है, वो जो लपटे निकलती है वो अग्नि है, लेकिन जो नीचे राख बच जाती है अंत में वो अग्नि काय है। अब वो राख अगर मिट्टी में मिल जाए तो क्या होगा, तो फिर परमाणु वही के वही कहां रहे। ये कारण विपर्यास है, मतलब किसी कार्य के कारण के बारे में विपरीत निर्णय कर लेना कारण विपर्यास। जैसे कुछ बात सुनकर के आप उदास हो गए, 10-15 दिन तक के मूड खराब हो गया, अब कोई पूछे कि क्या हो गया तो बोले उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसके कारण मैं दुखी हुआ। ये भी कारण विपर्यास है, यानी ये मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है। अगर कारणों के बारे में कोई विपरीत निर्णय हो जाए तत्व संबंधी, तो फिर वो मिथ्यात्व की श्रेणी में चला जाता है, मिथ्या ज्ञान हो गया वो, उसके कारण मैं दुखी हुआ। अब इस पर और बारीकी से विचार करो, ठीक है, व्यवहार ने तो यही कहेगा कि अमुक के कारण तमुक काम हुआ, लेकिन क्या मैं उसके कारण दुखी हुआ, ऐसा एकांत है, या फिर एक दृष्टि से मैं उसके कारण दुखी हुआ, सर्वथा दुखी हुआ उसके कारण, या किसी अपेक्षा से दुखी हुआ उसके कारण, बताइए। किसी अपेक्षा से हुआ ना, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे अनिष्ट था, और मुझे अनिष्ट होने के कारण मुझे दुख हुआ, तो फिर दुख का मूल कारण कहां था, मेरे अंदर या उसके पास, कैसे। संसार में कुछ भी इष्ट या अनिष्ट नहीं है, इष्ट और अनिष्ट अपने राग द्वेष के फैसले हैं। और जिसको इष्ट माना था वो न मिले तो दुख होता है, जिसको अनिष्ट माना था वो मिले तो दुख होता है। तो दुख का कारण इष्ट और अनिष्ट कहलाने वाली वस्तु नहीं, किंतु इष्ट और अनिष्ट का भेद करने वाला राग और द्वेष, यानी अपनी मान्यता से दुख होता है। अगर आप ये मानना छोड़ दो कि किसी के कारण मुझे दुख होता है, तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी कुछ भी करे आप दुखी नहीं हो सकते, कोई ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके, क्योंकि आपका विश्वास है कि किसी अन्य के कारण दुख नहीं होता, खत्म काम। इसीलिए जो संसार की व्यवस्था संभालने वाले हैं वो दुखी है। क्योंकि एक दृष्टि से देखें तो फिर आपका कथन सत्य है कि व्यवस्था संभालना तो जो जिस कर्तव्य पद पर अवस्थित है उसके लिए जरूरी है, लेकिन इसमें भी अपन रास्ता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे रास्ता, पर आप बताइए उसमें किसको सुख मिला दोनों के युद्ध में, बाहुबली सुखी हुए या भरत सुखी हुए, कोई सुखी नहीं हुए। और इसमें एक विभाग अपन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा आइडिया है, हर काम दिल से नहीं करना और हर काम दिमाग से भी नहीं करना। जो दिमाग से करने योग्य काम है वो दिमाग से करना, जो दिल से करने योग्य काम है वो दिल से करना, आत्म कल्याण दिल से करना पर कल्याण दिमाग से करना। कभी टेंशन नहीं आता, पर कल्याण दिमाग से करोगे कभी टेंशन नहीं होगा, आत्म कल्याण दिल से करोगे तो टेंशन नहीं हो, दिमाग से करोगे तो फिर ये लगेगा कि अब इसमें ये जो पुण्य है ये सामानिक पद के योग्य है या इंद्र पद के योग्य है, ऐसी बनियागिरी आएगी वहां पर। पुण्य कमाते समय या धर्म की आराधना करते समय भी वो वणिक बुद्धि काम करेगी, अगर आप दिमाग से काम करोगे तो। तो धर्म का कार्य दिल से करना और व्यवहार का कार्य दिमाग से करना। अब होता ही है कि व्यवहार का काम अपन दिल से करना चाहते हैं, जैसे किसी बच्चे ने अपनी बात नहीं मानी तो फिर दिल टूट जाता है। अरे भाई वो काम दिल से करने का था ही नहीं, वो काम दिमाग से करने का था, तो उसने नहीं मानी तो किस तरीके से माने, वहां दिमाग लगाओ। दिमाग से सारे व्यावहारिक कार्य संपन्न हो जाते हैं, और दिल से जो भावनात्मक, जैसे श्रद्धा है, भक्ति है, करुणा है, प्रेम है, ये भावना है, भूल मत जाना, याद रखना, लिखना हो तो लिख लेना, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, प्रेम, वैराग्य, समर्पण, ये सब भावना है, ये सकारात्मक भावना है। नकारात्मक भावनाएं भी होती है, उदासी, अवसाद, बैर, अवसाद, अवसाद यानी एकदम वो गुमसुम हो जाता है, क्यों भाई क्या कैसे हो, कैसे, अब का क्या अर्थ है पता नहीं। अवसाद जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन बोलते हैं, ये सब नकारात्मक भावना है। और जो अंदर ठेस लगी रहती है, दिल की जो ठेसे होती है, वो भी नकारात्मक। कभी कभी अपन अपने आप से नाराज हो जाते हैं, इसलिए अपना हित छोड़ देते हैं। ये देखना ना, प्रैक्टिकली देखिए ना, जिस दिन आपको खुद पर गुस्सा होगा उस दिन आप ऐसे उल्टे सीधे काम करेंगे कि बिल्कुल आपको किसी न किसी प्रकार से खुद को तकलीफ पहुंचेगी। ये दिल में चले गए ना, इसलिए अवसाद में आ गए। दिमाग से निकालो ना काम, कि अब ऐसी स्थिति बन रही है, क्या करें, अब वैसे बैठे रहेंगे और फिर गोलियां खाएंगे तो कुछ इलाज नहीं होने वाला, गोलियां बंद करेंगे तो फिर से तकलीफ होगी, तो उसके लिए क्या करना, दिमाग लगाओ कि मैं खाली बैठता हूं तो प्रॉब्लम आता है, तो खाली क्यों बैठूंगा, मैं किसी अच्छे कार्य में व्यस्त क्यों ना हो जाऊं। खाली दिमाग शैतान का घर। अपने ऊपर अफसोस करना उसी के लिए संभव है जो फुर्सत में, फुर्सत में बैठने वाले ही खुद के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचकर दुखी होते हैं। और जिनके पास काम होता है, जो व्यस्त रहते हैं, सत्कार्यों में जो अपना समय लगाते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता अपने बारे में अफसोस करने का। सेल्फ पिटी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट में ये सिखलाया जाता है कि अपने ऊपर तरस खाना समय की जबरदस्त बर्बादी है। तरस खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। करुणा अलग वस्तु, तरस खाना अलग वस्तु। मैंने अपने आप को इतना दीनहीन समझ लिया कि तरस खाने योग्य स्थिति आ गई, वैसी स्थिति होती नहीं कभी। अपना स्वाभिमान बनाओ, किसी और पर भी तरस मत खाओ, उसकी भी आत्मा का सम्मान करो। डॉक्टर पॉला हॉरन ने लिखा है, तरस खाना नेगेटिविटी है, नकारात्मक भावना है। यद्यपि उस पर लोग समझेंगे कि बहुत दयालु है, पर नहीं, तरस खाना दया नहीं है। तरस खाने का मतलब है कि उसको इतना तुच्छ समझ लिया, उसको इतना हीन समझ लिया कि उसके सिवाय कोई और प्रतिक्रिया नहीं हो रही आपके अंदर, सिर्फ तरस खा रहे हैं आप। जैसे किसी शराबी को नाली के किनारे पड़ा हुआ देख करो, उसके मुंह के आसपास कुत्ते वगैरह सब कुछ भी करते चले जा रहे हैं, उसको देख करके देखने वाला तरस खाता है। तरस उस पर खाया जाता है जिसका, जिसके प्रति अपने हृदय में सम्मान नष्ट हो जाता है, और डांटा भी उसी को जाता है जिससे, जिसको अपन अपने से छोटा समझते हैं। बराबरी वाले को या बड़े को कभी नहीं डांटा जा सकता। अगर कोई लड़का अपने पिता को डांटता है तो वो किसी न किसी दृष्टि से पिता को छोटा समझ रहा है, तब डांट रहा है। ये मनोविज्ञान है। बहुत सारा मनोविज्ञान जीवन के प्रसंगों का विश्लेषण करने से समझ में आ जाता है। कि ऐसा हुआ वैसा। अब समस्या ये है कि विश्लेषण न करने का कारण क्या है, कि अपन जीवन के प्रसंगों में तुरंत भावुक हो जाते हैं। अगर भावुक ना होकर बुद्धि से अपन देखें उस चीज को, तो फिर विश्लेषण की क्षमता बढ़ जाएगी, रीजनिंग पावर। फिर आप तर्क से विचार करेंगे कि अरे ये क्या है। श्रद्धा में तर्क नहीं है, और व्यवहार में जहां जैसी परिस्थिति है उसको उस तर्क के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, उसमें से समाधान निकाल सकते हैं। समाधान निकालने के लिए तर्क वितर्क करना ठीक है, पर श्रद्धेय के प्रति तर्क करना ठीक नहीं है। तो विभ्रम यानी विपरीत निर्णय। तो कितने प्रकार के विपर्यास हुए, कौन से? स्वपूर्व स्वरूप विपर्यास और कारण विपर्यास। फिर तीसरा विपर्यास जो है वो है भेदा भेद विपर्यास। भेदा भेद विपर्यास, भेद को अभेद समझ लेना और अभेद में भेद समझ लेना। जैसे वैशेषिक मत वाले ये मानते हैं कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग है। ज्ञान के संयोग से आत्मा चेतन होता है, ज्ञानी बनता है। तो ये गुण और गुणी में सर्वथा भेद मान लिया, तो विपर्यास आ गया। जैन दर्शन में कहा है कि गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता। ज्ञान गुण है और गुणी आत्मा है, तो आत्मा के बिना ज्ञान नहीं रह सकता और ज्ञान रहित आत्मा नहीं हो सकता। पर उस मत में ऐसा भेद माना गया है, तो ये भेद विपर्यास हो गया। फिर अभेद विपर्यास भी रहता है। अब भेद होते हुए भी अभेद का भ्रम हो जाए, जैसे शरीर और आत्मा इनमें लक्षण भेद है, द्रव्य भेद है, और निश्चय से क्षेत्र भेद भी है। व्यवहार से तो शरीर जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में आत्मा है, लेकिन निश्चय से आत्मा का जो क्षेत्र है वो उसके चेतन प्रदेश है, और शरीर का जो क्षेत्र है वो उसके जड़ प्रदेश है, जड़ परमाणु है। तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों की अपेक्षा से शरीर और आत्मा नए दृष्टि से भिन्न है, लेकिन भिन्न को भी अभिन्न समझ लेना कि नहीं मैं तो नहीं मानता कि शरीर और आत्मा भिन्न है। सुबह से शाम तक मेरे ही साथ रहता है शरीर और मैं इसके साथ रहता हूं। तो जब ऐसा साथ है, जन्म से मरण तक का जब साथ है, तो फिर अलग कैसे मान लें इसको? ये तो सच्चा जीवन साथी है। बीच में जो जीवन साथी रहता आते हैं वो तो कभी चले भी जाते हैं और कभी छोड़ भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर ही मैं हूं, ये जो विपरीत निर्णय है ये भी विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। ऐसे तीन प्रकार के दोष होते हैं। तो आत्मा और पर के स्वरूप में जब संशय विमोह और विभ्रम से रहित ज्ञान होता है, तब उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो साकार होता है। साकार का अर्थ है विकल्प सहित, और उसके भेद भी अनेक होते हैं, आकार सहित, एकदम प्रकाश चालू करो अपरिचित स्थान पर। तो पहला जो एहसास होता है कि कुछ कुछ है, उस कुछ कुछ है के पहले भी अपनी चेतना कुछ काम करती है, वो है दर्शन। उसमें भेद प्रभेद नहीं आते। फिर ज्ञान जो होता है, कुछ है, ये ज्ञान की श्रेणी में आ गया। फिर विशेष जानने की तरफ जब झुकाव होता है ज्ञान का, तो पहला तो है अवग्रह, कुछ है, वो सफेद है, पीला है, लाल है, कुछ है अवग्रह। फिर ईहा होती है, तो ईहा में विशेष जानने की तरफ ज्ञान झुकता है। ये सभी इंद्रियों से होता है, कानों से भी होता है, आंखों से भी होता है, सभी से होता है। स्वाद जीवा इंद्रिय से भी होता है, मुंह में कोई चीज डाली आपने, फिर आप विचार करते हैं क्या है इसमें, क्या क्या डाला है, ये ईहा, कौन से मसाले हैं इसमें, संचर है या सिंधो, ये सब जानने में विशेष जो उत्कंठा रहती है वो ईहा है। फिर निर्णय हो जाए तो उसको अवाय कहते हैं कि हाँ ये काला जो है ये पिताश्री का वस्त्र है, ये निर्णय हो गया अवाय। और फिर निर्णय ऐसा हो जाए कि वो स्मरण में बना रहे, स्मृति में स्थिर निर्णय को धारणा कहते हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान। फिर मति ज्ञान के कारण जो पदार्थ को जाना था उस पदार्थ के बारे में विचार करते करते कहीं से कहीं ज्ञान पहुंच जाए, ऐसा ही वस्त्र अमुक फिल्म में अमुक हीरो ने पहना था और फिर उसने ऐसे ऐसे काम किए थे और उसको इतने पैसे मिले थे और पैसों के बारे में आजकल बहुत धांधली चल रही है, फिर ये सब जो जितने कनेक्टेड संकल्प विकल्प चलने लग जाते हैं लंबे चौड़े, वो सब श्रुति ज्ञान में चले जाते हैं। अर्थात अर्थांतर ज्ञान श्रुति ज्ञान, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान कर लेना, ये श्रुति ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान जो होता है वो तो संशय, विमोह और विभ्रम से रहित होता है, साकार होता है और उसके अनेक भेद होते हैं। दर्शन क्या है? जनसामण्यम गहनम भावाणम नैव कट्टुमायारम अविशेषी दूण अट्ठे दंसन मिधिभण्डई समय। जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है, उनके आकार प्रकारों का भेद न करते हुए जो पदार्थों का केवल सत्तावलोकन रूप देखना मात्र है, उनके भेद प्रभेदों को न ध्यान में लाते हुए केवल एक सत्ता मात्र का अवलोकन, उसको शास्त्रों में दर्शन कहा है। दंसन पुगवन नाणम छदुमत्थाणम न दुन्नी वोगा जुगवन जम्मा केवली नाहे जुगवन दुते दूवी। छदमस्त जीव जिनको अभी केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उनको छदमस्त कहते हैं, तो छदमस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। न दुन्नी होगा होगा, और एक साथ दर्शन ज्ञान नहीं हो सकता, जब दर्शन होगा तब दर्शन होगा तब ज्ञान नहीं होगा, जब ज्ञान होगा तब ज्ञान होगा दर्शन नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। बारहवें गुण स्थान पर ज्ञान और दर्शन क्रमशः होते हैं, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन, ऐसा क्रम चलता रहता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान, पहले दर्शन, बोल तो रहे अभी हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया था। दर्शन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, एक साथ दोनों नहीं होते, और केवली ना है ते दो भी जुगवंत, परंतु केवली भगवान में, केवली नाथ में, जिनेंद्र भगवान में दोनों साथ में होते। अब सराग चरित्र क्या है? असुहादो विणी वित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम वद समिति वित्ति रूपम व्यवहारणयादिण भणियम। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ व्यवहार चरित्र, व्रत, समिति और गुप्ति रूप, तेरह चरित्र, तेरह प्रकार का चरित्र होते हैं, कौन से तेरह? व्रत पांच, समिति 5, गुप्ति 3, ये 13 चरित्र। अब इसमें मुख्यता किसकी रहती है? अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये व्यवहार चरित्र हो गया। मैंने 5 पापों को छोड़ दिया, 5 व्रतों में प्रवृत्त हो गए, 5 असावधान चेष्टाओं का त्याग कर दिया और सावधानी पूर्वक चेष्टा में लग गए। समिति मन वचन का है को रोक दिया, फिर कर लिया, गुप्ति हो गई। ये व्यवहार चरित्र है। फिर निश्चय चरित्र क्या है? बहिरभ्यंतर क्रिया रूहु भव कारण प्रणाशत्थम नाणिजिणत्तम तम परम समचारित्तम। बाह्य और अंतरंग क्रियाओं का रुक जाना, संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए बहिरंग और अंतरंग क्रियाओं को रोक लेना। रोकने वाला कौन होगा? नाणिस, सम्यक ज्ञानी। ये तो रावण भी तो एकदम मन वचन काय की चेष्टाओं को रोककर बैठ गया। तो फिर और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो विद्याओं को सिद्ध करते समय ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं कि उपसर्गों में भी स्थिर रहते हैं और विद्याएं सिद्ध हो जाती है। पर यहां क्या कह रहे हैं कि संसार के कारणों का नाश करने के लिए जो मन वचन काय की क्रियाओं को अंतरंग से और बहिरंग से रोक लिया जाता है और रोकने वाला सम्यक ज्ञानी होता है, तो उसको जिनेंद्र भगवान ने परम सम्यक चरित्र कहा, निश्चय सम्यक चरित्र। और ये स्थिति बनती है अभेद रत्नत्रय में, निर्विकल्प समाधि में, सिद्धोपयोगी में। इसलिए आचार्य महाराज ध्यान की प्रेरणा देते हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। दुविहं विमुख हेयु झाणी पाऊण जमुनी नियमा तम्मा पयत्त चित्ता जूयन जानम समब्बसः। दोनों प्रकार के मोक्ष हेतु अर्थात व्यवहार रत्नत्र और निश्चय रत्नत्र। मुनि नियमा झाणे पाऊण भी, मुनिराज नियम से ध्यान के समय प्राप्त कर लेते हैं। जब मुनिराज ध्यान में अवस्थित होते हैं तो भेदाभेद रत्नत्र उनको प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान में ये दोनों मोक्ष के हेतु प्राप्त हो जाते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त हो जाते हैं। तम्मा इसलिए, जूयम आप लोग भी, पयत्त चित्त सावधान चित्त होकर झाणम समब्बस ध्यान का अभ्यास करो, खूब अच्छे ढंग से अभ्यास करो ध्यान का, क्योंकि ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष हेतु प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भी ध्यान का सावधानी पूर्वक अभ्यास करो। कैसे करें ध्यान? तो बड़ी सुंदर गाथा है, ध्यान करने का बहुत सुंदर सूत्र है। मामुज्य मारज्य मा दुस्सह इच्छणिच्छाथेसु चिरमिच्छह जय चित्तम विचित्त ध्यान असिद्धि। ये अनेक प्रकार के ध्यान को सिद्ध करने के लिए अपने मन को यदि तुम स्थिर करना चाहते हो, क्यों स्थिर करना चाहोगे? ध्यान की सिद्धि के लिए यदि मन को स्थिर करना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के प्रति भ्रमित मत होना, राग मत करना और द्वेष मत करना, अपने आप ध्यान लग जाएगा। मोह राग और द्वेष को छोड़ दो इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के प्रति, बस ध्यान का यही उपाय है। अब देखो कितना छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसके रहस्य पर अगर अपन गहराई से विचार करो तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जितने लोगों का ध्यान नहीं लगता उन सबसे पूछो कि क्यों नहीं लगता, पूछो, मन भटक जाता है, ये उत्तर मिलेगा ना। मन कहाँ भटक जाता है? मन अलोकाकाश में तो नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? कहीं छह द्रव्यों में कहीं ना कहीं तो जाता होगा, धर्म द्रव्य में नहीं जाता, अधर्म द्रव्य में नहीं जाता, कहाँ जाता है मन? किसी न किसी इष्ट या अनिष्ट विषय में जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि इस भ्रम को पहले दिमाग से निकाल दो, कुछ भी इष्ट या अनिष्ट नहीं है। अब मन से बोलो कि जाओ कहाँ जाते हो, जब कुछ बचा ही नहीं इष्ट या अनिष्ट तो मन वहां जाकर क्या करे, खत्म काम। जिसके प्रति राग होता है वहां जाता है मन, पर जिसके प्रति द्वेष होता है वहां भी जाता है। बस इनको शांत कर दो तो मन अपने आप ध्यान में लग जाता है, यही ध्यान का उपाय है। अब इनको शांत करने के लिए क्या करना, क्योंकि एकदम आप एक क्षण के लिए सोच लो कि कोई भी चीज इष्ट या अनिष्ट नहीं है और फिर ध्यान करने बैठो तो फिर थोड़ी देर बाद आपको फिर तकलीफ होने लग जाएगी, जब पैर दुखेंगे तो फिर लगेगा कि ये तो अनिष्ट है, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा कि कोई चीज इष्ट या अनिष्ट नहीं है। फिर थोड़ी देर ऐसा पुरुषार्थ आप करते जाएंगे, ऐसा लिखा है ज्ञानार्णव में लिखा है कि जिसकी ये मान्यता है कि पंचम काल में ध्यान नहीं होता उसको नहीं होता। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता, जिसने जन्म लिया पंचम काल में उसको शुक्ल ध्यान नहीं होता। पर धर्म ध्यान का कौन निषेध कर रहा है? जो होता है वो तो करके बताओ, फिर जो नहीं होता उसकी चर्चा बाद में की जाएगी, जो हो सकता है वो तो करो। आचार्य कहते हैं कि ध्यान करने के लिए अभी तत्काल आपका मन वितराग नहीं होने वाला, तो पहले तो सालंब ध्यान करिए आलंबन सहित, फिर अंत में निरालंब ध्यान करिए। गृहस्थ निरालंब ध्यान तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए दीक्षा लेनी होती है मुनि दीक्षा, क्योंकि जब तक परिग्रह है तब तक वो निर्विकल्पता संभव नहीं है। अगर परिग्रह में निर्विकल्प हो जाए तो घर में केवल ज्ञान हो जाए, नहीं हो, निर्विकल्प हो जाए तो केवल ज्ञान ही बन जाए, इसलिए निर्विकल्प नहीं होता ये जान करके गृहस्थ निष्परिग्रह होकर फिर निर्विकल्प होता। परिग्रह के साथ निर्विकल्पता जो लोग स्वीकार करते हैं वो वास्तव में करुणा के पात्र हैं, जबरदस्त भ्रम है उनके दिमाग में। बाकी छोटे मोटे दूसरे जो स्थूल मिथ्यात्व है वो तो आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म मिथ्यात्व अंदर पड़ा हुआ है कि अरे हम तो कहीं भी रहे हम तो निर्विकल्प रहते हैं, कहीं भी रहे हम निर्विकल्प रहते हैं, हम तो दुकान में बैठकर बड़े बड़े सौदा करते हुए भी निर्विकल्प रहते हैं, फिर सौदा काय करते हो? इतने निर्विकल्प हो तो फिर दुकान पर जाने की क्या आवश्यकता है? ये सब खुद को धोखा देने वाले लोग हैं। और फिर अपनी संगति में आने वालों को शब्द जाल में प्रभावित करके उसको भी भ्रमित कर डालते, अरे तुम कहाँ दीक्षा लीक्षा की सोच रहे हो, एकदम मस्त रहोगे, सिर्फ विकल्प छोड़ना है तब आत्मा का कल्याण हो। दीक्षा लेने के बाद भी जो लोग विकल्प नहीं छोड़ते उनका थोड़ी कल्याण होता है। हम देखो इतना बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन फिर भी निर्विकल्प, ऐसे निर्विकल्प लोग संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो उनको संसार के जो दूसरे क्रियाकलाप हैं उनके बारे में हित और अहित का कोई विकल्प नहीं है, अथवा ये कह रहे हैं कि उनको अपनी आत्मा के हित का कोई विकल्प या विचार नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निर्विकल्प किसको कहो? विचार रहित होना निर्विकल्पता नहीं होती। विकल्प का अर्थ है अहंकार, अहंकार को विकल्प कहा है, और संकल्प का अर्थ ममकार। मैं करना विकल्प है, मेरा 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 करना संकल्प है। मैं को अहंकार कहते हैं। अब अहंकार और अभिमान में अंतर है। अभिमान में अपने को बड़ा समझा जाता है, लेकिन अहंकार में बड़ा और छोटा दोनों समझा जा सकता है। मैं गरीब आदमी हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं परेशान हूं, ये सब अहंकार है, ये सब विकल्प है। इसलिए छेड़ाला में कहा ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, ये विकल्प है। तो उसमें दुखी भी आ गया ना, नहीं तो अब अभिमान की अगर बात करें तो फिर कोई दुखी व्यक्ति अभिमान करता है कि मैं दुखी नहीं। लेकिन मैं शब्द आया इसलिए अहंग, मैं दुखी, वो मैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अहंकार करना यानी कार, घय प्रत्यय कर दिया क्री धातु में, दुक्री करने में, तो फिर कार पुल्लिंग शब्द बन गया अहंकार। तो ध्यान के लिए बड़े अद्भुत बात आचार्य नेमिचंद जी ने कह दी कि इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में भ्रम मत रखो, राग मत रखो, द्वेष मत रखो। यदि मन को ध्यान की सिद्धि के लिए स्थिर करना चाहते हो तो, अगर ध्यान में रुचि नहीं है, अब ऐसे आंख बंद करके बैठते हैं तो बकाई छूटती रहता है, अरे ये तो बेकार लग रहा है, एकदम तुरंत उठने की इच्छा होती है, तो फिर समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि साधना प्रारंभ में कष्टकारी प्रतीत होती है, पर एक बार अगर उस धारा में आप आ गए, ध्यान की रुचि आपके अंदर जागृत हो गई और ध्यान की साधना करते समय आपको रस आने लग गया, तो फिर ध्यान छोड़ने में आपको तकलीफ होगी, फिर अंदर जाने में आनंद होगा, बाहर आने में कष्ट होगा। शुरू में क्या होगा कि अंदर जाने में कष्ट होगा, बाहर रहने में आनंद आएगा, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वास्तविक आनंद तो यहाँ है, भीतर है। तो उसके लिए तीन बातें कह दी, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, ध्यान अपने आप लगेगा। पर फिर ढोंग भी मत करो, सब मोह की सब साधन सामग्री अपने पास रख करके बोलो कि मेरे पास मोह नहीं है, मैं निर्मोह हूं। तो निर्मोह है तो फिर वो इन वस्तुओं को मोह है क्या आपके साथ, आपके पीछे लगी? देखो, या तो आपका मोह है धन दौलत से, या फिर धन दौलत का आपके प्रति मोह है, नहीं तो दोनों का साथ कैसे हो सकता है बताइए? एक के अंदर तो लगाव होगा ना, अगर दोनों को लगाव नहीं है तो फिर साथ में कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, पृथक हो ही जाएंगे। और मान लो एक दिन साथ में रह जाए, दो दिन रह जाए, जीवन भर कैसे साथ निभेगा? नहीं नहीं तो जो लोग पैसों का त्याग नहीं कर रहे हैं या फिर घर गृहस्थी में अटके हुए हैं, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अभी मोह टूटा नहीं है, अभी अंदर राग बचा हुआ है, तभी हम इसमें फंसे हैं। राजा जनक का दृष्टांत आता है कि एक व्यक्ति आकर के बोलता है कि आप तो विदेही कहलाते हैं, और जनक की पुत्री को वैदेही कहते थे सीता जी को, तो आप विदेही कहलाते हैं क्योंकि आप राजा होकर के भी विराग हैं, राग से रहित हैं, ये कैसे संभव है? मेरे मन में शंका हुई, मैं आपसे अभयदान पूर्वक इसका समाधान चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रति मुझे शंका हुई कि आप राजा होकर के निर्मोह कैसे हो सकते हैं, राग रहित कैसे हो सकते हैं। मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूं लेकिन फिर भी परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ते। तो फिर राजा ने ऐसे कोई खंभा अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा कि पहले मेरे हाथ को इस खंभे से अलग करके बताओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तो उसने काफी शक्ति लगाई लेकिन राजा बहुत मजबूत था, तो राजा की पकड़ को वो छुड़ा नहीं सका। फिर राजा पूछते कि अच्छा तुम ही बताओ कि ये हाथ कैसे अलग हो सकता है। तो बोले आप ढीला छोड़ दो तो अलग हो सकता है। तो राजा उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम्हारे मोह ने परिवार को पकड़ा है। अब तुम अगर मुझसे पूछो कि मैं कैसे छूट सकता हूं, तो तुम छोड़ दो तो छूट सकते हो, वो तुम खुद नहीं छोड़ रहे हो और उनको दोष दे रहे हो कि परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ रहे। कोई किसी को नहीं पकड़ता, खुद मोह छोड़ दे तो कोई ताकत नहीं है पकड़ने वाले, छूटा छूटा है। तो अब इसके बाद मंत्रों का ध्यान जो है उसकी चर्चा आगे आने वाली है। 48 गाथाएं हो चुकी हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो Thank you.